ओम शांति। बाबा ने हम बच्चों को संगम युग पर पूजनीय बनाया है, अपने ही समान जैसे बाबा की पूजा होती है ऐसे बच्चों की भी पूजा होती है, और बच्चे बाप से भी आगे हैं। बाबा कहते हैं डबल पूज्य हैं, निराकार रूप से भी और देवी देवता के रूप में भी। निराकार रूप में शालिग्रामों की पूजा होती है, कोई भी यज्ञ रचते हैं तो शालिग्राम बनाते हैं। हमने एक मंदिर देखा था जम्मू में, वहाँ एक रघुनाथ टेम्पल है और वहाँ लाखों शालिग्राम हैं जिनकी पूजा होती है, और एक एक ही कमरे में हजारों, मतलब ऐसे कई कोठियाँ हैं और उसमें एक ही कमरे में हजारों शालिग्राम छोटे 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 छोटे, और फिर उनको एक साथ अभिषेक कर देते हैं पानी से पाइप के द्वारा, और ऊपर रोली डाल देते हैं इकट्ठे ही। और ऐसे ही देवी देवताओं के रूप में जो पूजा होती है वो भी बहुत विधि पूर्वक होती है। बाबा कहते हैं और जो धर्म नेता हुए या राजनेता हुए, अभिनेता हैं, प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, उनकी जो पूजा होती है वो उतनी विधि पूर्वक नहीं होती है। गायन होता है और अगर होती भी है तो कोई विशेष दिन पर हो जाएगी। अब जैसे क्राइस्ट के लिए चर्च बने हुए हैं तो लोग संडे संडे चर्च जाते हैं, या मस्जिद में भी जाएंगे तो जुम्मे जुम्मे वो मस्जिद में जाएंगे, लेकिन मंदिरों में प्रतिदिन नियमित रूप से और देवताओं की हर कर्म की पूजा होती है और साजों और बाजों के साथ पूजा होती है। तो ये जो पूजनीय बनने का आधार है वो कौन सी तपस्या रही, और वो तपस्या है पवित्रता की। जो प्यूरिटी की पर्सनालिटी और रॉयल्टी है उसने ही पूजनीय बनाया, और जो पवित्रता है ब्राह्मण जीवन में वो डायरेक्ट हमारी परमात्मा विधि के आधार पर है। बाबा ने हमें समझाया, स्मृति दिलाई कि हम सब आदि अनादि स्वरूप में पवित्र आत्माएं हैं। अनादि स्वरूप परम धाम में जब आत्मा है तभी भी वो संपूर्ण पवित्र है, और जब आदि रूप में आती है देवता रूप में जब सतयुग में जन्म होता है तो पूरे दो युग सतयुग त्रेता युग देवताएं भी पवित्र हैं। और जब ये स्मृति आई तो सामर्थ्य आ गई कि मेरा निजी स्वरूप, हमारा जो स्वभाव है वो ही पवित्रता है। और फिर हिम्मत रखी तो बाबा की मदद भी मिली और उसके आधार पर पवित्रता सहज हो गई। दुनिया में भी लोग पवित्रता का पालन करते हैं लेकिन उनकी जो पवित्रता है वो परमात्मा की विधि पूर्वक पवित्रता नहीं है, और इसीलिए वो पूजनीय नहीं बनते। उनकी पवित्रता गायन योग्य जरूर है। आज कितने सन्यासी हैं, महात्मा हैं, पवित्र रहते हैं। एक कुमारी का भी हम देखते हैं नवरात्रि के दिनों में पूजन होता है क्योंकि कुमारी पवित्र है। तो पवित्रता का महत्व है। पवित्रता की परिभाषा बाबा ने और भी गूढ़ रीति से समझाई कि केवल ब्रह्मचर्य का पालन करना ही पवित्रता नहीं लेकिन ब्रह्मचारी बनना है, ब्रह्मा बाबा के आचरण पर चलने वाला। ब्रह्मा बाबा ने जो संकल्प बोल कर्म किए वो संकल्प बोल कर्म हमारे हों, जिसको अभी जो बाबा की मुरली चली पिछली डेट में, उसमें बाबा ने कहा कि हमें पाप समान संपन्न और संपूर्ण स्थिति में कर्म करने हैं, और एक मास का वो होमवर्क भी बाबा ने हमें दिया है, और उसके आगे संपूर्ण निर्विकारी बनना, कोई भी विकार का अंश वंश भी ना हो। मोटे रूपों में तो हम विकारों को जीत लेते हैं, लेकिन उसके जो सूक्ष्म स्वरूप हैं विकारों के, जैसे काम विकार के लिए कहेंगे कि लगाओ झुकाओ प्रभाव में आ जाते हैं किसी भी कारण से, चाहे किसी के गुण है, विशेषता है, ज्ञान है, योग है, सेवा है, पालना है, किसी भी विशेषता से अगर प्रभावित होते हैं और उस आत्मा के लगाव में आ जाते हैं, तो वो उसका सूक्ष्म अंश, कामना भी सूक्ष्म अंश है विकार का। तो बेहद की वैराग्य वृत्ति हो, कहने का भाव क्या है कि सब किनारे छोड़े हुए हों, देह अभिमान का त्याग। इसमें जो सबसे बड़ा त्याग है, क्योंकि मुख्य बात होती है दैहिक आकर्षण की, तो बाबा ने सबसे पहले हमें देह अभिमान का ही त्याग कराया, और जब देह अभिमान का त्याग हो गया, मुझे दूसरों को भी आत्मा रूप में ही देखना है, आत्मा रूप में हम सब भाई भाई हैं, आत्मिक दृष्टि हमारी शुद्ध दृष्टि वृत्ति हो जाती है, और उनके भी हम अनादि स्वरूप को देखते हैं। तो अनादि स्वरूप को देखना यानी उनके गुणों को देखना, कि ये आत्मा भी प्रेम स्वरूप है, ये आत्मा भी पवित्र है, ये आत्मा भी सुख स्वरूप है, शक्ति स्वरूप है। तो फिर उनकी जो कमियां भी हैं, जो वर्तमान स्वरूप है, जो हम तमो प्रधान स्थिति कहते हैं, वो हमें नहीं दिखाई देगी, उसका आदि अनादि स्वरूप ही हम देख रहे हैं। ये भी तपस्या है, और तब हर आत्मा के प्रति वो आत्मिक भाव, अव्यक्त भाव हमारा रहेगा, वो जो हमारा स्नेह होना चाहिए, रूहानी स्नेह जिसे बाबा कहता है, वो हर आत्मा के प्रति रहता है। तो ये पवित्रता को सूक्ष्मता से बाबा हमें समझाते हैं। ऐसे ही और भी विकारों के अंश वंश हैं। फिर बाबा ये भी कहते हैं कि स्वप्न में भी किसी भी आत्मा के प्रति ईर्ष्या आवेश या क्रोध के अंश के प्रभाव में भी कर्म ना हो, या स्वप्न में भी ब्रह्मचर्य खंडित ना हो। और उसके आगे भी बाबा कहते हैं कि दिनचर्या में आलस्य और अलबेलापन भी ना हो। जो बाबा ने हमें अमृत वेले से रात तक दिनचर्या दी है, उसका हम विधि पूर्वक पालन करें। अगर दिनचर्या में भी हम ऊपर नीचे करते हैं, सुबह अमृत वेले हम कभी उठते हैं कभी नहीं उठते हैं, और अगर उठ भी जाते हैं तो फिर अगर विधि पूर्वक नहीं बैठते हैं, सुस्ती आती है, मजबूरी से बैठते हैं, नियम है करना ही है, तो फिर बाबा कहता है कि जो आपके पुजारी होंगे, पूजा करने वाले, वो भी अमृत वेले उठेंगे नहीं, और अगर उठेंगे भी तो वो भी मजबूरी से सुस्ती से उठेंगे, मजबूरी से पूजा करेंगे आपकी, तो अंतर पड़ जाता है। इसीलिए पूजा भी नंबर वार होती है, देवता सभी बनते हैं लेकिन सभी देवताएं एक जैसे पूज्य नहीं है, किन्हीं देवताओं के हर कर्म की पूजा होती है और किन्हीं देवताओं का रोज श्रृंगार होता है, किन्हीं देवताओं के सामने हर समय कीर्तन होता है, और किन्हीं देवताओं की कभी कभी पूजा होती है, कभी कभी श्रृंगार होता है, यानी कोई विशेष दिन होता है तब वो मंदिर खुलता है, और कभी कभी ही वहां कीर्तन होता है। तो पूज्य पद पाने में भी इसके कारण पवित्रता की सर्व प्रकार जो है उसको हम कितना पालन करते हैं अभी संगम युग पर, उस अनुसार ही हमारे पूज्य पद में अंतर आ जाता है। और अगर पवित्रता खंडित होती है तो बाबा कहते हैं कि जैसे खंडित मूर्ति पूजी नहीं जाती है, खंडित मूर्ति जो होती है उसे म्यूजियम में रखते हैं और लोग उसे देखने आते हैं, जो संपूर्ण मूर्ति होती है वही पूजनीय होती है। तो यहां भी अगर खंडित होती है पवित्रता तो फिर पूजन में भी उतना अंतर आ जाता है। तो सबसे मुख्य आधार है पवित्रता। और फिर दूसरी तपस्या है बाबा से सर्व संबंधों की अनुभूति। ये भी पवित्रता का आधार है कि हमारे सर्व संबंध एक बाबा से हैं, माता पिता, शिक्षक, गुरु, दोस्त, बंधु, बच्चा, जो संबंध हम अनुभव करना चाहें। बाबा से अभी रविवार को मुरली चली थी कि हर संबंध की अनुभूति प्राप्ति और फिर उसके आधार पर तृप्ति, यानी एक बाबा से ही हम सर्व प्राप्त करते हैं, अन्य सभी आत्माओं को हम देते हैं। लेना सिर्फ एक बाबा से है और बाकी जिनके भी संपर्क में आते हैं। अब ये अर्थ नहीं है कि बाबा से सर्व संबंध है तो अन्य आत्माओं से हमें तोड़ देना है। परिवार में रहते हैं तो सबसे तोड़ निभाना भी है, अपने कर्तव्य भी निभाने हैं, अपनी जिम्मेवारियां भी निभानी है। कई लोग ऐसा करते हैं कि तोड़ देते हैं, तो फिर कुछ लोग समझते हैं कि ये तो ज्ञान में गए तो बिल्कुल रूखे सूखे हो गए, और कुछ लोग फिर निभाते हैं तो इतना निभाते हैं कि बाबा से ही उनका योग टूट जाता है। तो निभाना है ये समझकर कि बाबा ने मुझे इनकी सेवा के अर्थ रखा है, जिसे बाबा कहते हैं हम ट्रस्टी हैं, सब कुछ तेरा, यानी जो भी संबंध है वो बाबा के हैं, बाबा ने मुझे दिया है, हमने उनको दे दिया, बाबा को उनकी जिम्मेवारी दे दी, बाबा हमारे द्वारा उनकी पालना करा रहे हैं। इस आधार से हमें लौकिक को अलौकिक में परिवर्तन करना है, उनके प्रति दृष्टि वृत्ति को बदलना है। जैसे ब्रह्मा बाबा ने किया, बाबा ने सर्व समर्पण किया, तन मन धन सब बाबा ने समर्पित किया, जिम्मेवारी बाबा की हो गई। तो उसके बाद फिर कभी बाबा ने मेरा पन नहीं लाया, और देखने में आया कि उनके जो लौकिक संबंधी थे वो साथ में थे, लेकिन उनकी दृष्टि वृत्ति बाबा के प्रति पूरी तरह से बदल गई। जो उनकी पत्नी थी जसोदा, उन्होंने कभी भी फिर उसके बाद उन्हें पति रूप में नहीं देखा, हमेशा बाबा, जैसे सब बाबा समझते थे ऐसे ही वो भी समझते थे। ऐसे ही उनकी जो बहू थी राधिका, जो ब्रजेंद्रा दारी थी, उन्होंने भी बाबा को सदा फिर बाबा रूप में ही देखा। तो हमारे जो परिवार में हैं, हम उनके प्रति जिस तरह से दृष्टि वृत्ति व्यवहार करेंगे वैसे ही उनका हमारे प्रति भी दृष्टि वृत्ति परिवर्तन हो जाएगी, जिसको बाबा कहते हैं वृत्ति से वृत्ति का परिवर्तन होना। तो ये समझ की बात है, ऐसे नहीं कि हम उनको भाई कहना शुरू कर देंगे या बहन कहना शुरू कर देंगे, संबंध वही रहेंगे लेकिन उसके आधार पर वो परिवर्तन हम महसूस करते हैं। फिर संबंधों में समर्पण होता है तो हम देखते हैं भक्तों ने भी भगवान के लिए बहुत भक्ति की हुई है और कहते रहे कि जब आप आएंगे तो हम आप पर बलिहार जाएंगे। जो भक्त तपस्या करते हैं वो तो भगवान के दर्शन पाने के लिए, अपनी मनोकामनाएं पूरी करने के लिए करते हैं, और कठोर तपस्या करते हैं। ऐसी तपस्या बाबा हमसे नहीं कराता है ना, वो तो लंबे लंबे निर्जल उपवास रखेंगे या कोई मंत्र का जाप करेंगे या कोई पोजीशन में बैठेंगे तो दिनों तक, महीनों तक, सालों तक भी कई बार। अभी कुछ दिन पहले मैंने सुना था कि एक हिमालय में संत हैं जो 5 साल तक लेट कर नहीं सोए, बैठे ही रहे, बैठ करके उन्होंने वो तपस्या की। नींद भी आई तो बैठे बैठे ही, जैसे झुटके मार कर सोते हैं, मतलब ये प्रतिज्ञा कर ली कि जब तक भगवान की मुझे जो भी वो प्राप्ति की इच्छा थी ईश्वर से वो नहीं होगा तब तक मैं मुझे लेटना नहीं है। और फिर जब वो इतनी कठोर तपस्या करते हैं तो उनकी मनोकामना पूरी हो जाती है, वो सिद्ध संत हो जाते हैं। पर बाबा कहते हैं हमारी वो सिद्धियां नहीं है, हमारी विधि से सिद्धि है। और ये भी कि भगवान जब हम समर्पित होते हैं तो हमारी पूरी जिम्मेवारी लेते हैं। इसके ऊपर भी एक बहुत अच्छी भक्तों की कहानी आती है कि एक श्रीधर एक भक्त थे, भगवान के अनन्य भक्त जिसे कहते हैं, पूरी तरह से ईश्वर की मर्जी पर चलने वाले, भगवान तेरी जैसे मर्जी। तो कई बार ऐसे भक्त जो होते हैं वो बहुत दरिद्र होते हैं, गरीब होते हैं, उनके रोज के खाने का भी ठिकाना नहीं होता। तो मिल गया भगवान की मर्जी से तो खा लिया, और नहीं मिला तो उस दिन उपवास कर लिया, ऐसे उनका जीवन चलता था। लेकिन थे बहुत विद्वान, रोज वेद शास्त्र पढ़ना, गीता पढ़ना उनका नियम था। तो गीता पढ़ रहे थे तो उसमें एक श्लोक है गीता में, वो पूरे श्लोक का भाव इस तरह के कि जो भी भक्त मुझे अनन्य भाव से भजते हैं और निरंतर मुझे ही स्मरण करते हैं उनका योग क्षेम मैं वहन करता हूँ। योग क्षेम व्यायाम में हम ऐसे संस्कृत में लास्ट में। तो उनको इस पर डाउट हुआ, उन्होंने कहा कि भगवान क्यों वहन करेंगे, वहन करेंगे माना वो खुद ले जाते हैं भक्तों तक, यानी जो उनको प्राप्ति नहीं है वो प्राप्ति कराते हैं और जो प्राप्ति है उसकी वो रक्षा करते हैं, इसका भाव ये है। तो उनको ये बात में थोड़ा संदेह हुआ तो उन्होंने उसको काट दिया, व्याम हमको काट के कर दिया ददाम हम, यानी भगवान वहन नहीं करते लेकिन वो देते हैं। और फिर उसके बाद वो नदी पर स्नान करने के लिए चले गए तो उनके पीछे से ही एक 5 साल का बच्चा उनके घर आया। और वो एक पूरा बरनी थी जो चावल और दाल की भरी हुई थी, वो आकर के उसने उनकी पत्नी को दिया और कहा कि ये आपके लिए है, क्योंकि आपके घर में आज कुछ खाने पीने का अनाज नहीं है, ये मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। तो वो उसने ले लिया, क्योंकि वो ब्राह्मण थे तो वो स्वीकार करते हैं। फिर उसके बाद उसने पूछा उनको कि आप कौन हैं, क्या हैं, तो उसने जो उत्तर दिए उनको बड़ा अजीब सा लगा कि अच्छा ऐसे भी कोई हो सकता है क्या। फिर देखा कि उसके गाल पर सूजन है और जो होंठ है वहां से कुछ कट लगा हुआ है और खून निकल रहा है। तो पूछा कि ये तुमको चोट कैसे लगी, तो उसने कहा कि आपके पति ने मुझे मारा है और उनके कारण ही ये मेरा खून निकल रहा है। तो उसने कहा कि मेरे पति तो कभी किसी को नहीं मारते, वो तो सबसे बहुत स्नेह रखते हैं। तो उसने कहा कि जब आपके पति आएंगे तो उनसे पूछ लेना। और फिर वो चला गया कि मुझे औरों के लिए भी अभी ये सब करना है तो मैं जल्दी में हूँ, जा रहा हूँ, चला गया। उनके पति जब लौटे तो उसने सारी ये बात सुनाई उनको कि ऐसे ऐसे एक बच्चा आया और उसने ऐसे कहा। और जैसे ही उसने सुना वो समझ गए कि स्वयं भगवान जो है वो बच्चे का रूप, अब यही भक्तों की कहानी है कि बच्चे का रूप लेकर के आए, तो मेरी पत्नी ने उसके दर्शन कर लिए, मैं तो उनके दर्शन से वंचित रह गया। और ये जो उसने कहा कि आपके पति ने मुझे मारा, तो उन्होंने सिद्ध कर दिया कि भगवान खुद लेकर के आए, वहन किया मतलब जो उनके खाने के लिए जो अप्राप्त था उसको प्राप्त कराना वो भगवान की जिम्मेवारी है, तो भगवान खुद लेकर के उनके द्वार पर आए। तो फिर उनको फिर से ठीक करना पड़ा कि व्यामहम नहीं, ददाम्यम नहीं, लेकिन व्यामहम मतलब भगवान खुद वहन करते हैं, पूरी जिम्मेवारी जो है वो भगवान उठाते हैं अपने भक्तों की। और इसलिए बाबा भी हमें कहते हैं कि कैसा भी समय होगा लेकिन बाबा के बच्चों को दाल रोटी जरूर मिलेगी, भले ही 36 प्रकार के भोजन ना मिले, हाँ लेकिन सूखी रोटी भी मिलेगी, लेकिन मिलेगी जरूर, वो अनुभव बाबा कराएंगे जब भी जो विनाश का समय होगा या जो भी ऐसा समय होगा। तो समर्पण भाव बाबा के प्रति सदा, ये हमारी तपस्या है। फिर एकाग्रता से हम अभ्यास करें, तपस्या का अर्थ भी होता है दृढ़ता संपन्न अभ्यास। तो जो भी हमारे योग अभ्यास हैं, जैसे हमें अव्यक्त स्थिति का अनुभव करना है, फरिश्ता स्थिति का अनुभव, डबल लाइट स्थिति का अनुभव, बीज रूप स्थिति का अनुभव या अशरीरी स्थिति का अनुभव परम धाम में, तो हम पूरी तरह से जितना समय उस स्थिति का अनुभव करना चाहते हैं और जब अनुभव करना चाहते हैं उतना समय हमारा मन उस स्थिति में एकाग्र हो जाए, उसको हम कहेंगे तपस्या। ऐसे नहीं कि एक सेकंड के लिए मन परम धाम गया और दूसरे सेकंड फिर नीचे आ गया, फिर हम कोशिश करके मन को ले जाएं परम धाम में, फिर टिके नहीं, कोई ना कोई बात जो है वो मन को फिर नीचे खींच लाए। तो ये युद्ध, इसको हम युद्ध की स्थिति कहेंगे, यानी एकाग्रता नहीं हो रही लेकिन मन, क्योंकि भटकने की आदत है मन की, तो हम कोशिश तो कर रहे हैं योग लगाने की उस स्थिति में मन को स्थित करने की, लेकिन मन स्थित नहीं हो पा रहा। तो एकाग्रता की तपस्या हो हमारी और उससे विकर्म विनाश होते हैं, जो हमारे जन्म जन्मांतर के पाप हैं जिसे बाबा कहता है, वो हमारे भस्म होते हैं और आत्मा पावन बनती है। फिर हमारी एक रस स्थिति हो, निंदा स्तुति मान अपमान जय पराजय हानि लाभ सुख दुख, जो उतार चढ़ाव हमारे जीवन के आते हैं, जो भी हमारे जीवन में समस्याएं आती हैं, परिस्थितियां आती हैं, विघ्न आते हैं, आएंगे ही बाबा ने कहा, लेकिन वो सब हलचल होते हुए भी हमारी स्थिति एक रस हो। और ये बहुत काल का अभ्यास चाहिए, जब बहुत काल का अभ्यास होगा तब अंत में बाबा कहता है, क्योंकि अंत में ये हलचल में लाने वाली बातें तो जरूर होंगी, तभी तो पेपर होगा और उस पेपर में हम पास होंगे, तो हम तब पास हो पाएंगे जब बहुत समय से हमारी वो एक रस स्थिति होगी, अडोल अवस्था होगी। तो ये भी तपस्या है हमारी जो हमें अभी से करनी है। एकांत का अभ्यास भी तपस्या का ही हिस्सा है, कि हमें पता है हमारे संस्कार क्या हैं, तो संस्कारों को मुझे परिवर्तन करना है, जैसे बाबा ने कहा ना, जो बाबा के संस्कार हैं वो मेरे संस्कार हैं, अब उसमें कितना अंतर है मुझे मालूम है, तो मेरे संस्कार जो मुझे परेशान करते हैं या मेरे संस्कारों के कारण दूसरे परेशान हो जाते हैं, वो हर एक को मालूम होता है कि अभी तक भी कौन से ऐसे मेरे कड़े संस्कार हैं जिन पर मैं बार बार मेहनत करती हूं लेकिन फिर भी संस्कार परिवर्तन नहीं हो पा रहे। तो फिर एकांत में बैठकर जब हम उस पर मेहनत करते हैं, फिर हमें चाहे उसके लिए जो भी मदद लेनी पड़े वो मदद हम लें, तो फिर हम उनको परिवर्तन कर पाते हैं। और हमारा जीवन के जो कर्म है वो कर्म आदर्श हों, अलौकिक हों, दूसरों को प्रेरणा देने वाले हों, तभी हम पूज्य बनते हैं। हमारा जीवन दूसरों के लिए प्रेरणा हो, और वो तब होगा जब हमारा रहन सहन खान पान उसमें अलौकिकता होगी, सादगी होगी, त्याग होगा। अगर हम मानो धनी भी हैं, जैसे हमने ब्रह्मा बाबा को देखा कि बाबा अपने लौकिक जीवन में बहुत धनी थे, लेकिन जैसे ही शिव बाबा की प्रविष्टता हुई, निश्चय हुआ, बाबा ने बिल्कुल अपने जीवन में सादगी को अपना लिया और लास्ट तक भी बाबा बिल्कुल सादे जीवन में रहे, त्याग तपस्या के जीवन में रहे। तो ऐसे ही बहुत ना तो ऊंचा ना बहुत साधारण, बाबा हमेशा कहते हैं ब्राह्मणों का रहन सहन कैसा होना चाहिए, ना बहुत लग्जरियस होना चाहिए और ना ही बहुत साधारण होना चाहिए। और जो भी हमारी दृष्टि वृत्ति है वो इस प्रकार की हो कि उससे हम भी संतुष्ट रहें, जो भी हमारे चाल चलन व्यवहार है उससे दूसरे भी संतुष्ट हों, और भोजन भी हमारा सादा भोजन होना चाहिए, सात्विक भोजन होना चाहिए, और विशेषकर रात के समय तो हम सादा और सुपाच्य भोजन ही लें। बहुत मसाले वाला अगर तले हुए हम भारी चीजें खाते हैं तो उसका असर हमारे अमृत वेले की तपस्या पर आ जाएगा, क्योंकि अन्न का हमारे मन पर असर होता है। वैसे भी नियमित रूप से भी जो हमारा भोजन होना चाहिए वो इस प्रकार का ही होना चाहिए। तो इन बातों का अगर हम ध्यान रखते हैं अपनी तपस्या में तो निश्चित रूप से पवित्रता की धारणा करना हमारे लिए सहज होता है और वो पवित्रता ही हमारे पूजन योग्य बनने का आधार है। तो मेरी संपूर्ण पवित्रता की स्थिति कहाँ तक पहुंची है वो चेकिंग हमें रखनी है, क्योंकि हमें यहाँ ही इस ब्राह्मण जीवन में ही पुरुषार्थ करके अपनी संपूर्ण पवित्रता को प्राप्त करना है। ओम शांति।